आगे सबक देखिए भाई। वल हासिलु अन्न लफ्ज अल इब्तिदा मौजूउन लिमानन कुल्लियिन व लफ्जत मिन मौजूअतुन लिकुल्ली वाहिदिन मिन जुज़ियातिहिल मख्सूसतिल मुतअक्कलति मिन हैसु इन्नहा हालातुन लिमुतअल्लकातिहा व आलातुन लितअर्रुफि अहवालिहा وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل قصدا ويلاحظ في حد ذاته فيستقل بالمفهومية ويصلح أن يكون محكوما عليه وبه. گزشتہ اسباق میں ہم نے اسم کی تعریف شروع کی تھی. साहिब काफिया ने आपको बतलाया अलिस्मु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही कि इसम वो कलीमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो उसकी जात में होता है. तो फी नफ्सिही की जमीर उन्होंने मा दल्ला की तरफ यानी मा मौसूला की तरफ राजे की भाई, और माम लफ्जों के एतबार से वो मुजक्कर है तो नफ्सिही की हा जमीर भी क्या है, मुजक्कर है भाई. यानी इसम वो कलीमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो उस कलीमा की जात में होता है. और कलीमा की जात में माना होने का मतलब यह है कि कलीमा खुद उस पर दलालत करता है, किसी और लफ्ज के उसके साथ जोड़ने की हाजत नहीं है भाई. और फिर उसके बाद मुल्ला जामी रहमहुल्ला ने ईजाह की इबारत भी नकल की. मैंने बतलाया ईजाह ये शरा है मुफस्सल की और ये तसनीफ है अल्लामा इब्ने हाजिब यानी साहिब काफिया की. तो उसमें साहिब काफिया ने जो फी नफ्सिही की हा जमीर है इसको माना की तरफ राजे किया है, और फिर उस पर इश्काल होता है कि मानन फी नफ्सिल माना के इसमें तो जर्फ और मजरूफ का इत्तेहाद लाजिम आया. मैंने बतलाया फी जरफियत के लिए आता है, माकबल में जो होता है वो मजरूफ होता है और माबाद में जर्फ होता है, और मजरूफ और जर्फ दोनों एक दूसरे से गैर होते हैं, एक चीज दूसरी चीज के अंदर है. तो मालूम हुआ जो अंदर है वो और चीज है और वो चीज जो उसके लिए जर्फ है वो और चीज है, दोनों एक ही चीज हो ये नहीं हो सकता भाई, ये बातिल है. तो इस सूरत में खराबी क्या लाजिम आई, मानन फी नफ्सिल माना इसमें तो जरफियतु शय लिनफ्सी ही लाजिम आया कि एक चीज अपने लिए ही जर्फ बन जाए और यह बातिल है. तो उसका जवाब फिर साहिब काफिया ने दिया था कि यहां फी बमाने एतबार के है, ये मानन फी नफ्सी ही ऐ मानन बेतबार ही फी नफ्सी ही, यानी ऐसा माना जो अपनी जात के एतबार से मोतबर है, किसी अमरे खारिज के एतबार से, किसी अमरे खारिज के लिहाज से मोतबर नहीं है. और फिर उसके लिए अरब का मुहावरा भी जिक्र किया था कि ये फी एतबार के माना में होता है, ये कलाम अरब में भी है, यानी कि हमने अपनी तरफ से एक बात कर दी. चुनाचे कलाम अरब में कहते हैं अद्दारु फी नफ्सिहा हुक्मुहा काजा, कि ये जो घर है फी नफ्सिहा अपनी जात के लिहाज से, अपनी जात के एतबार से इसका हुक्म ये है, यानी इसकी कीमत ये है, यानी उस घर का जो मेटीरियल है उसकी बनावट है उसके एतबार से इस घर की इतनी कीमत है. और अगर उमूर खारिजिया को भी मिला लिया जाए तो फिर इस सूरत में घर की कीमत तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये शहर के वस्त में भी है और बड़े बड़े लोग भी जो हैं इसके पड़ोस में रहते हैं, और नीज यहां पर हर तरह की सहूलियात हैं और यहां पर खूब हिफाजत और अमनो अमान है भाई इस हिस्से में. तो उस एतबार से फिर कीमत और ज्यादा है. तो जिस तरह जो वो चीजें जो खारिज में मौजूद होती हैं उनमें कभी अमरे खारिज का लिहाज होता है, कभी अमरे खारिज का लिहाज नहीं होता, इसी तरह ये जो माना है इसके अंदर भी कभी अमरे खारिज जो है उसका एतबार होता है और कभी अमरे खारिज का एतबार नहीं होता. और फिर उसके बाद साहिब काफिया ने यह भी फरमाया कि मानन फी नफ्सी ही जब आपको समझ में आ गया तो हर्फ की तारीफ भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हर्फ की तारीफ में क्या है, अल हर्फु मा दल्ला अला मानन फी गैरी ही, वहां पर भी फी गैरी ही आ रहा है. तो इश्काल होता है कि हर्फ ऐसा कलिमा है जो ऐसे माना पर दलालत करता है, फी गैर ही, जो गैर हर्फ में होता है, हर्फ के अलावा में होता है, तो इसका तो मतलब है हर्फ अपने माना से बिल्कुल खाली है, और यह बात तो सही नहीं। तो उसके बारे में भी आपको कहते हैं बात समझ में आ गई होगी कि जैसे फी नफ्सी ही में फी एतबार के माना में है, इसी तरह फी गैर ही के अंदर भी फी क्या है, एतबार के माना में है। और गैर हर्फ से हर गैर चीज मुराद नहीं है, बल्कि हर्फ के मुतअल्लिकात मुराद हैं, और हर्फ के साथ जब मुतअल्लिकात जिक्र होते हैं तो फिर उसका माना समझ में आता है, मुतअल्लिकात के बगैर उसका माना समझ में नहीं आता। मीन के साथ सीरतू और बसरा जिक्र करेंगे तो मीन का माना शुरू करना समझ में आएगा, तो बगैर मुतअल्लिकात के मीन अपने माना पर दलालत नहीं करता। तो हर्फ अल हर्फ मा दल्ला अला मानन फी गैरिही, हर्फ वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो साबित है बएतबार गैर के, यानी बएतबार अपने मुतअल्लिकात के, किसके, हर्फ के मुतअल्लिकात के एतबार से साबित है वो ऐसे माना पर दलालत करता है। तो हर्फ का माना खुद ब खुद साबित नहीं, बल्कि अपने मुतअल्लिकात के एतबार से उसका माना साबित होता है। उसके बाद फिर हासिल महसूल की बहस हमने शुरू की थी, मैंने बतलाया ये शरह जामी का मुश्किल तरीन हिस्सा है, और अल्लाह ताला उलमा को बेहतरीन जजा नसीब फरमाए कि उन्होंने इस मकाम की बेहतरीन तशरीह की और इसको हल कर दिया, वरना ये बहुत मुश्किल मकाम है भाई। तो ये महसूल हो, मैंने बतलाया था कि इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक व महसूलहू के जिमन में आएगा, महसूलहू के बाद आएगा, और दूसरा वल हासिल के बाद आएगा। महसूलहू के अंदर मुल्ला जामी जो है मीर सैयदुस सनद की तकरीर जिक्र करेंगे और माने इस्मी और माने हर्फी में फर्क बयान करेंगे, और फिर वल हासिल में जाकर मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अपनी तकरीर करेंगे और मुकम्मल वजाहत कर देंगे कि क्या फर्क है माने इस्मी में और माने हर्फी के अंदर भाई। और ये हासिल महसूल की जो बहस है, मैंने बतलाया इसके छह हिस्से हम कर लेते हैं, छह हिस्से हमने कर लिए, अब इसका समझना आसान हो जाएगा। अब तक हम दो हिस्से पढ़ चुके हैं इसके, पहला हिस्सा था वह महसूलहू से, उसमें इन्होंने मीर सैयदुस सनद की इबारत जिक्र की, और मीर सैयदुस सनद ने जो माना है माना इस्मी और हर्फी, ये माकूल है, जहन में आने वाली चीज है, इसको तशबीह दी थी महसूस के साथ, यानी वो चीजें जो खारिज में मौजूद हैं, क्योंकि महसूस चीजें आंखों से नजर आती हैं तो उससे बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये जो माने इस्मी और हर्फी ये है माकूल, और खारिज में जो चीजें हैं वो हैं महसूस, तो माकूल को महसूस के साथ तशबीह देकर इन माने इस्मी और माने हर्फी में फर्क बयान किया था। चुनांचे वो फरमाते हैं कि खारिज में जो हैं, खारिज में जिस तरह चीजें दो किस्म की हैं, कुछ वो चीजें हैं जिनका अपना अलग वजूद है, वो अपने वजूद में गैर की मोहताज नहीं, और उनको जौहर कहते हैं और कायम बिज़ात भी कहते हैं। जैसे मसलन आपका वजूद है, आपका अपना अलग वजूद है, आप अपने वजूद में किसी चीज के मोहताज नहीं। किताब आपके सामने है, किताब का अपना अलग वजूद है, यह अपने वजूद में किसी चीज के मोहताज नहीं। जबकि कुछ चीजें खारिज में वो हैं कि जो अपने वजूद में गैर के मोहताज हैं, और उनको आराज कहा जाता है, यानी सिफात भाई। सिफत जो है मौसूफ के साथ कायम होती है, मौसूफ है तो सिफत है, मौसूफ नहीं तो सिफत भी नहीं है। जैसे जैद और उसकी सखावत, ये जो सखावत है ये जैद की सिफत है, जैद तो कायम भी जाती ही है, लेकिन ये सखावत कायम बिल गैर यानी कायम बिल जैद है, किसके साथ कायम है, कायम है, ये जैद के साथ कायम है। जैद है तो जैद की सखावत भी है, जैद नहीं तो जैद की सखावत का भी अलग वजूद नहीं। या ये चीजों के जैसे हमें रंग नजर आते हैं, ये चीजों के रंग, ये चीजों की सिफात हैं, इनका अपना अलग कोई वजूद नहीं। तो जैसे खारिज में कुछ चीजें कायम बिल जात हैं और कुछ चीजें कायम बिल गैर हैं, इसी तरह माकूलात जो हैं, अकल में जो चीजें आती हैं, वो भी दो किस्म के हैं। कुछ माकूल वो हैं जो मुदरक भी जात होते हैं, अकल की भी जात उनकी तरफ तवज्जो होती है, और ये महकूमुन अलै बनने की भी सलाहियत रखते हैं और महकूमुन बिही बनने की। वजह मैंने जिक्र की थी क्योंकि महकूमुन अलै एक चीज है जिस पर आपने हुक्म लगाना है, और महकूमुन बिही उसका हुक्म लगाना है, तो महकूमुन अलै की तरफ भी अकल की कसदन तवज्जो होनी चाहिए और महकूमुन बिही की तरफ भी अकल की कसदन तवज्जो होनी चाहिए। मसलन मैं आपसे कहता हूं जैदुन आलिमुन, तो मैंने जैद पर क्या हुक्म लगाया है? आलिम होने का, तो जैद की तरफ भी मेरी कसदन तवज्जो होनी चाहिए, आलिम की तरफ भी मेरी कसदन तवज्जो होनी चाहिए। जैद की तरफ क्यों कसदन तवज्जो? क्योंकि जैद पर मैंने एक हुक्म लगाना है, और आलिम की तरफ जो मुसनद भी ही है यानी महकूमुन भी ही है उसकी तरफ भी मेरी कसदन तवज्जो होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसका हुक्म लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो जब एक चीज पर एक बात का आप हुक्म लगाते हैं तो जहन की उसकी तरफ कसदन तवज्जो होगी, फिर ही हुक्म लगेगा, वह ये नहीं कि जुबान बगैर सोचे समझे खुद ही चल पड़ेगी। तो जैद की तरफ भी तवज्जो करना पड़ेगी और आलिम की तरफ भी, और फिर इस आलिम को जोड़ देंगे किसके साथ? जैद के साथ जोड़ देंगे, जिससे दोनों में रब्त आ जाएगा। तो महकूमुन अलै उसकी तरफ भी कसदन जहन की तवज्जो जरूरी और महकूमुन बिही की तरफ भी जहन की कसदन तवज्जो जरूरी। तो इसी तरह वो मुदरक जो बिज़ात होता है और कसदन मुदरक होता है वो महकूमुन अलै भी बन सकता है और महकूमुन बिही भी, क्योंकि उसकी तरफ अकल की तवज्जो है भाई, कसदन है। और एक वो माकूल है जो तबअन मुदरक है, वो तब अन अकल उसका इदराक करती है, बिजात अकल की उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तब अन एक और चीज का इदराक करते हुए उसका भी अकल ने क्या कर लिया? इदराक कर लिया, या यूं कहें इसको अकल आला बनाती है गैर का इदराक करने के लिए। तो ये महकूमुन अलै और महकूमुन बिही नहीं बन सकता। और इसकी बड़ी प्यारी मिसाल जिक्र की मीर सैयदुस्सनद रहिमहुल्लाह ने, उन्होंने कहा जैसे आईना है और एक है उसमें सूरत, जब आप आईने की तरफ देखते हैं तो आपको आईना भी नजर आता है और उसमें अपनी सूरत भी नजर आती है, तो ये दोनों मुबसर हैं, ये यूं कहें ये दोनों मुदरक हैं, आप दोनों का इस वक्त इदराक कर रहे हैं, लेकिन ये इदराक मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ होता है। कभी आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपकी बिज़ात तवज्जो अपनी सूरत की तरफ होती है, आप अपने आप को उस आईने और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को संवार रहे होते हैं, तो इस वक्त आपकी कसदन तवज्जो अपनी सूरत की तरफ है, लिहाजा आप उस सूरत पर आप हुक्म लगाते हैं कि मेरे बाल संवर गए हैं या मेरे बाल नहीं संवरे। देखो बालों पर आप हुक्म लगा रहे हैं, सूरत पर आप हुक्म लगा रहे हैं, तो इस सूरत में देखो आपकी कसदन तवज्जो सूरत की तरफ है और आईने को आपने आला बनाया है, उसके जरिए इस सूरत को आप देख रहे हैं, तो आईना भी मुदरक है लेकिन वो है तबअन मुदरक है। तो इस वक्त आईना जब तबअन मुदरक है और इसको आपने सिर्फ आला बनाया है तो अब आप आईने पर हुक्म नहीं लगा सकते कि यह आईना अच्छा है या अच्छा नहीं, क्योंकि आपकी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, वो तो नजर आ रहा है लेकिन तब अन नजर आ रहा है, जहन की तवज्जो अकल असल में आपकी उसकी तरफ नहीं है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि जब आप मसलन आप बाजार आईना खरीदने जाते हैं, अब आप आईना उठाकर देखते हैं खरीदने के लिए उसको देख रहे हैं, तो अब आईना भी आपको नजर आ रहा है, आईने में अपनी सूरत भी नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त आपकी जहनी तवज्जो किसकी तरफ है? आईने की तरफ है, और सूरत इसको आपने आला बनाया है आईने को परखने के लिए कि आईना अच्छा है या अच्छा नहीं, तो इस सूरत में सूरत पर आप हुक्म नहीं लगा सकते क्योंकि वो तबान मुदरक है और आला है, और जबकि आईने पर आप हुक्म लगा सकते हैं क्योंकि उसकी तरफ आपकी कसदन तवज्जो है, चुनांचे आप हुक्म लगाते भी हैं, आईने को देखकर आप कहते हैं ये आईना अच्छा है, देखो ये आईना, आईने पर आप हुक्म लगा रहे हैं अच्छा है, अच्छा होना या बुरा होने का हुक्म लगा रहे हैं आईने पर। बात समझ में आ गई? इसी तरह दूसरी मिसाल थी जैसे घड़ी और वक्त, उसमें भी कभी आपकी तवज्जो कसदन घड़ी की तरफ होती है और वक्त की तरफ कसदन तवज्जो नहीं, और कभी वक्त की तरफ कसदन तवज्जो होती है और घड़ी की तरफ कसदन तवज्जो नहीं होती। इसी तरह मैंने एक मिसाल लिखवाई थी कामा जैदुन और निस्बतुल कियाम इला जैदिन, कामा जैदुन के अंदर भी हमें निस्बत एक समझ में आ रही है और निस्बतुल कियाम इला जैदिन इसमें भी हमें निस्बत समझ में आ रही है, लेकिन कामा जैदुन में निस्बत जो है वो तबअन हमें समझ में आ रही है, असल तवज्जो हमारी कामा और जैदुन की तरफ है, अलबत्ता निस्बत जो है उसको हमने आला बनाया है यानी आईना बनाया है जिसमें हम इन दोनों को देख रहे हैं। निस्बत को हमने क्या बनाया है? आला बनाया है और आईना बनाया, जैसे आईने को आला बनाया था सूरत देखने के लिए, यहां पर भी ये निस्बत को क्या बनाया है? आला बनाया है। किसको देखने के लिए? कामा और जैद को। क्या नजर आया इसमें, इस आईने में? कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये निस्बत ने बतलाया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त निस्बत आपको समझ में तो आ रही है कामा जैद उनके दरमियान, लेकिन वो तबअन मुदरक हो रही है और उसको आपने आला बनाया है इन दोनों की हालत देखने के लिए। उस आईने से आपको पता चल रहा है कि इन दोनों की क्या हालत है इस वक्त, कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक मुस्नद इलैह है, यानी ये यूं कहें एक महकूमुन अलैह है तो दूसरा महकूमुन बिही है। तो इस सूरत में ये निस्बत आईना है और आला है, लिहाजा अब आप इस निस्बत पर हुक्म नहीं लगा सकते, न ये महकूमुन अलैह बन सकती है और न महकूमुन बिही बन सकती है। चुनांचे आप कामा और जैद को जरा अलग अलग कर दें, वो निस्बत खत्म हो गई, वो निस्बत खत्म हो गई। कामा अभी भी है, जैद अभी भी है, लेकिन निस्बत वो तो आला थी दोनों को देखने के लिए, वो तबअन इदराक हो रहा था, अब उसका इदराक नहीं क्योंकि निस्बत खत्म हो गई। और एक निस्बतुल कियामी इला जैदीन, इसमें भी आपको निस्बत समझ में आ रही है, लेकिन ये निस्बत कसदन है, ये लफ्ज़े निस्बत से आपको समझ में आ रहा है। निस्बतुल कियामी कि कियाम की निस्बत है इला जैदीन, किसकी तरफ? जैद की तरफ। तो ये पूरा जुमला है, तो इसमें निस्बतुल कियाम इसको आप महकूमुन अलैह बना रहे हैं क्योंकि कसदन इसकी तरफ तवज्जो है, ये लफ्ज़े निस्बत से आपको निस्बत समझ में आ रही है। और ये आला नहीं है, ये कसदन इसकी तरफ तवज्जो है, लिहाजा आप दोनों लफ्जों को अलहदा कर दें, निस्बतुल कियाम को अलग कर दें और इला जैदीन को अलग कर दें, फिर भी निस्बतुल कियाम से निस्बत समझ में आ रही है या नहीं? मालूम हुआ ये तबअन नहीं थी, तबअन आप इसका इदराक नहीं कर रहे थे बल्कि कसदन इदराक कर रहे थे, इसीलिए महकूमुन अलैह भी बन सकती है और महकूमुन बिही भी बन सकती है। उसके बाद हासिल महसूल की बहस का दूसरा हिस्सा आया था और इन्होंने आपको बतलाया था फल इब्तिदा मसलन, कि इब्तिदा जो है मिसाल के तौर पर, मैंने आपको बतलाया था कि इब्तिदा से इब्तिदा का माना मुराद है, लफ्ज इब्तिदा मुराद नहीं। ये जो इब्तिदा का माना है तवज्जो से समझो भाई, ये दूसरा हिस्सा अब इंशाल्लाह खूब वाजह आपको समझ में आ जाएगा। इब्तिदा यानी शुरू करना, शुरू करना माना मुराद है, लफ्ज मुराद नहीं। ये जो शुरू करना है इसके जरिए आप वजाहत कर रहे हैं मीर सैयदुस्सनद और समझाना चाहते हैं कि यही शुरू करने वाला माना कभी मुस्तकिल बिज़ात होगा, अकल की बिज़ात इसकी तरफ तवज्जो होगी और उस वक्त फिर यह महकूमुन अलैह भी बन सकता है और महकूमुन बिही भी बन सकता है। और यह सिर्फ उस वक्त होगा जब लफ्ज इब्तिदा इस पर दलालत करे, जब लफ्ज इब्तिदा इस पर दलालत कर रहा है तो इब्तिदा से हमें शुरू करने वाला माना समझ में आ रहा है, शुरू करने वाला माना समझ में आ रहा है और कसदन जहन इसकी तरफ मुतवज्जे है। इस वक्त ये मुस्तकिल बिल मफहूमियत है, यानी मुस्तकिलन समझ में आ रहा है लफ्ज इब्तिदा से, तवज्जो है। और इस सूरत में भी इसके मुताल्लिकात चाहिए क्योंकि मैंने बताया था आपको इब्तिदा दो चीजों के दरमियान निस्बत का नाम है। शुरू करना भाई, किसी चीज को शुरू किया जाएगा और कोई ना कोई जगह या जमाना होगा जहां से शुरू किया जाएगा, तो कोई जगह होगी या कोई जमाना होगा उससे शुरू किया जाएगा। तो इब्तिदा हमेशा एक निस्बत का नाम है। तो फिर इश्काल होता है कि आपने क्या कहा, लफ्ज से इब्तिदा से जो हमें शुरू करना समझ में आया ये मुस्तकिल बिज़ात है। क्या है? मुस्तकिल बिज़ात है, जहन की इसकी तरफ कसदन तवज्जो है। कहते हैं भाई ये मुस्तकिल बिज़ात कैसे हो सकता है, ये तो नाम ही दो चीजों के दरमियान निस्बत का है, ये तो नाम ही। इब्तिदा के लिए कोई एक फेल चाहिए, वो फेल भी जरूरी है फिर ही हमें समझ में आएगा, और उसके लिए कोई जगह या जमाना भी चाहिए जिससे इब्तिदा की जा रही है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कोई शुरू करना हो और कोई फेल ना हो जिसको शुरू किया जा रहा है, और कोई जगह या जमाना भी ना हो, सिर्फ शुरू करना हो? नहीं भाई, सिर्फ शुरू करना अकेला हो ही नहीं सकता, यह हमेशा किसी न किसी चीज की निस्बत होगी कि यह चीज, ये वाला काम, ये वाला फेल शुरू किया जा रहा है और फला जगह से या फला जमाने से शुरू किया जा रहा है, तो यह हमेशा निस्बत का नाम है। तो मैंने बतलाया था कि भाई ये जो मौकूफ होना है, ये जो इब्तिदा का मौकूफ होना है मुताल्लकात पर, किस पर? यानी इसके लिए एक चीज भी चाहिए जिसको शुरू किया जा रहा है और एक जगह या जमाना भी चाहिए जिससे शुरू किया जा रहा है, तो ये इसके मुताल्लकात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो मुताल्लकात। तो मालूम हुआ ये इब्तिदा के लिए मुताल्लकात जरूर चाहिए, बगैर मुताल्लकात के इब्तिदा हो ही नहीं सकती। यूं कहें इसके मुताल्लकात दो किस्म के हैं, एक है मुताल्लकात इजमालन और एक है मुताल्लकात तफसीलन। मुताल्लकात इजमाली ये है कि कोई भी फेल हो, कोई मखसूस फेल नहीं है, कोई भी फेल और कोई जगह या कोई जमाना हो, यानी कोई मखसूस जगह या जमाना नहीं। अब देखो जब मैंने कहा लफ्ज इब्तेदा, जैसे ही आपके जहन में क्या आ गया, शुरू करने का माना जहन में आया, साथ ही मुताल्लकात भी आ गए कि शुरू करना, मालूम हुआ कि कोई ना कोई चीज है जिसको शुरू कर किया जाएगा और कोई ना कोई जगह या जमाना होगा जिससे क्या किया जाएगा शुरू, तो वो इजमालन जहन में आ गए। तो ये जो इब्तिदा वाला माना आया समझ में, किससे आया, लफ्ज इब्तिदा से। इसके लिए भी मुताल्लकात चाहिए, लेकिन वो मुताल्लकात इजमालन भी हो तो काफी हैं, उनको लफ्जों में जिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो मैंने कहा लफ्ज इब्तिदा, मैंने कोई मुताल्लकात लफ्जों में जिक्र किए कि किस चीज की इब्तिदा और कहां से इब्तिदा है, मैंने तो कोई मुताल्लकात जिक्र नहीं किए, सिर्फ मैंने लफ्ज इब्तिदा कहा, और इब्तिदा के लिए तो मुताल्लकात जरूर चाहिए, तो वो खुद ब खुद आपके जहन में आ गए कि कोई ना कोई फेल होगा और कोई ना कोई जगह या जमाना होगा। तो लफ्ज इब्तिदा ने इब्तिदा पर दलालत कर दी, किसी मुताल्लक को साथ जिक्र करने की हाजत नहीं, खुद ही शुरू करने वाला माना समझ में आया, और माना जब समझ में आया जहन में तो इजमालन मुताल्लकात भी जहन में आ गए कि कोई ना कोई फेल होगा और कोई ना कोई जगह या जमाना होगा। तो इसको कहते हैं तवक्कुफ इजमाली, तवक्कुफ है। यहां पर भी शुरू करने का माना वो मौकूफ है मुताल्लकात पर, लेकिन यह मौकूफ होना किस किस्म का है, इजमाली है, तफसीली नहीं है। और तवक्कुफ इजमाली में मुताल्लकात का लफ्जों में जिक्र करना जरूरी नहीं होता, मैंने सिर्फ इब्तिदा कहा, आपको माना समझ में आया या नहीं, क्योंकि यह तवक्कुफ इजमाली है, यहां मुताल्लकात को लफ्जों में जिक्र करने की जरूरत, तवज्जो भी है या नहीं, क्या बात हुई, मैंने क्या जिक्र किया, इब्तिदा लफ्ज इब्तिदा, मैंने कोई साथ मुताल्लकात जिक्र किए, लेकिन फिर भी आपको क्या समझ में आ गया, शुरू करने का माना समझ में आया, और माना के साथ ही जहन में यह भी आया या नहीं कि कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई फेल होगा और किसी ना किसी जगह या, तो ये इजमालन मुताल्लकात आपके जहन में आ गए, तफसीलन नहीं आए कि खास फेल, ये वाला फेल शुरू किया और खास जगह या जमाना, वो जहन में नहीं। तो ये जो तवक्कुफ इजमाली है ये इस्तिक्लाल के लिए नुकसानदेह नहीं, ये इस्तिक्लाल के लिए, ये इब्तिदा का माना शुरू करना मुस्तकिलन मुस्तकिल बिल मफहूम है, अगरचे ये भी मुताल्लकात पर मौकूफ है, लेकिन ये मौकूफ होना किस किस्म का है, इजमालन, ये तवक्कुफ इजमाली है और ये इस्तिक्लाल के मुनाफ, ये इस्तिक्लाल के लिए नुकसानदेह नहीं। इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये जो इब्तिदा का माना है शुरू करना ये मुस्तकिल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये मुस्तकिल है, लफ्ज इब्तिदा से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तवक्कुफ इजमाली है, कोई भी फेल होगा बस जहन में इतना आ गया, कोई ना कोई जगह या जमाना होगा इतना जहन में आ गया, तो तवक्कुफ इजमाली इस्तिक्लाल के मुनाफी नहीं है, इससे इस्तिक्लाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो चीज वो माना फिर भी मुस्तकिल ही रहेगा। बात समझ में आ गई, तो लफ्ज इब्तिदा से ही समझ में आ जाएगा, यहां मुताल्लकात को जिक्र करने की कोई हाजत नहीं। और एक माना है इब्तिदा शुरू करना जब वो दो मखसूस चीजों के दरमियान निस्बत हो, जैसे सिरतु मिनल बसरति इलल कूफा, तो सिरतु की निस्बत बसरा की तरफ भी है, सिरतु की निस्बत कूफा की तरफ भी है, बसरा की तरफ कौन सी निस्बत है शुरू करने वाली और कूफा की तरफ कौन सी निस्बत है इख्तिताम वाली इंतहा वाली, तो मालूम हुआ देखा ये निस्बत का नाम है, उसी सिरतु की निस्बत बसरा की तरफ करें तो ये निस्बत कौन सी है शुरू करने वाली, और इस पर लफ्ज मीन दलालत कर रहा है, और इसी सिरतु की निस्बत करें कूफा की तरफ तो ये निस्बत कौन सी है इख्तिताम वाली इंतहा वाली, और इस पर इला दलालत कर रहा है, तो मीन से भी शुरू करने का माना समझ में आ रहा है, लेकिन इससे हर शुरू करना नहीं मुराद, इससे हर शुरू करना मुराद नहीं है, बल्कि कौन सा शुरू करना है, यह सिरतु का शुरू करना है, और हर जगह से शुरू करना नहीं है, बल्कि कहां से शुरू करना है, बसरा से शुरू करना है, तो ये जो मीन है इससे भी शुरू करने का माना समझ में आ रहा है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल नहीं है, बल्कि ये दो चीजों यानी सिरतु और बसरा के दरमियान निस्बत है, जब ये इन दो चीजों के दरमियान निस्बत है तो फिर ये मुस्तकिल नहीं, क्योंकि ये दो चीजें होंगी तो ये वाले मीन से शुरू करना समझ में आएगा, ये दोनों नहीं तो इनके दरमियान जो निस्बत है वो भी नहीं, निस्बत तो दो चीजों दो लफ्जों के दरमियान होती है ना, वो दो लफ्ज होंगे तो उनमें निस्बत भी होगी, दो लफ्ज नहीं तो दरमियान में निस्बत भी नहीं। तो यहां पर मीन से भी शुरू करने का माना समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला जो शुरू करना है इसकी तरफ अकल की भी जात तवज्जो नहीं है, बल्कि अकल की तवज्जो सीरतू की तरफ है। और अकल की तवज्जो किसकी तरफ है? बसरा की तरफ है। दरमियान में इनकी निस्बत है, वो भी अकल उसका भी इदराक कर रही है। तो अकल की तवज्जो किसकी तरफ? भी जात सीरतू की तरफ, और किसकी तरफ? बसरा की तरफ है। और इनके दरमियान वो शुरू करने वाली निस्बत है, उस पर क्या दलालत कर रहा है मीन? तो मीन से जो शुरू करने का माना समझ में आया वो मुस्तकिल नहीं है, बल्कि वो अपने मुताल्लकात पर मौकूफ हैं। और मुताल्लकात क्या हैं इसके? कोई भी फेल है या खास फेल है? खास फेल सिरतु है। और कोई भी जगह है या खास जगह बसरा है? खास जगह बसरा है भाई। तो ये दो खास चीजों के दरमियान निस्बत का नाम है, हर दो चीजों के दरमियान निस्बत का नाम नहीं है। तो इसके साथ ये सिरतू और बसरा जिक्र होंगे तो मीन से शुरू करने का माना समझ में आएगा, इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। मालूम हुआ ये जो मीन का माना शुरू करना है ये मुस्तकिल बिजात नहीं है, ये सिरतू और बसरा है तो है, ये सिरतू और बसरा नहीं तो मीन का माना शुरू करना भी यहां पर नहीं समझ में आएगा। तो जब तक मुताल्लकात नहीं होंगे यानी सिरतू और बसरा, तो हमें यह शुरू करने वाला माना भी बीच में समझ में नहीं आएगा मीन से, और मीन उस पर दलालत भी नहीं करेगा जब तक यह सिरतू और बसरा इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। तो फर्क क्या हुआ कि इब्तिदा से शुरू करने का माना समझ में आया, मीन से भी शुरू करने का माना समझ में आया, लेकिन इब्तिदा वाला शुरू करना वो क्या है? मुस्तकिल है। और मुस्तकिल है यानी लफ्ज इब्तिदा ही से समझ में आ जाता है, उसके साथ मुताल्लकात जिक्र करने की जरूरत नहीं। हां जहन में मुताल्लकात आते तो हैं लेकिन ये इजमालन आते हैं। क्या आते हैं? तो वो मौकूफ होना इजमाली है, तफसीली नहीं। और मीन से भी शुरू करने का माना समझ में आता है, लेकिन ये जो मीन से माना शुरू करने का माना समझ में आता है ये भी अपने मुताल्लकात पर मौकूफ है, लेकिन ये किस किस्म का मौकूफ है? इसका मौकूफ होना तफसीली है, यानी तफसील चाहिए कौन सा फेल है और कौन सी जगह या जमाने से है। यहां बताया सिरतू वाला फेल है और बसरा वाली जगह है, तो इन दोनों के दरमियान ये मीन जो है ये शुरू करने पर दलालत कर रहा है। दूसरा ले आओ, मसलन बच्चा खेलता रहा सुबह से शाम तक, तो अब देखो इसमें खेलने वाला फेल है, खास फेल है, और खास जमाना यानी सुबह से इसमें शुरू करने की निस्बत है भाई। या तीसरी मिसाल ले आओ, अब मैंने किताब का मुताला किया सफा 5 से सफा 10 तक, तो देखो यहां मीन आया यानी तालातुल किताब मिन हाज़िहि सफा इला ज़ालिका सफा, मैंने इस सफे से उस सफे तक किताब का क्या किया? मुताला किया। तो इसके अंदर देखो मीन ने किस पर दलालत की? शुरू करने पर। और हर चीज का शुरू करना है या मुताले का शुरू करना? मुताले का शुरू करना। और हर जगह से या फलां सफे से? फलां सफे से। बात समझ में आ गई? तो ये जो मीन है ये भी शुरू करने पर दलालत करता है, लेकिन इसके लिए मुताल्लकात का तफसीली जिक्र चाहिए, कौन सा फेल है और कौन सी जगह या जमाना है। जबकि लफ्ज इब्तिदा मैंने बोला उसका माना शुरू करना आपको समझ में आ गया, उसके लिए भी मुताल्लकात चाहिए, लेकिन उन मुताल्लकात का साथ जिक्र करना जरूरी नहीं। तो लफ्ज इब्तिदा से जो माना समझ में आया शुरू करना, वो मुस्तकिल है, वो महकूमुन अलैह भी बन सकता है और महकूमुन बिही भी बन सकता है। जबकि मीन से जो समझ में आया शुरू करने वाला माना, वो मुस्तकिल नहीं है, वो अपने मुताल्लकात पर मौकूफ है। मुताल्लकात हैं तो ये शुरू करने वाला माना भी है, मुताल्लकात नहीं तो मीन से शुरू करने वाला माना भी समझ में नहीं आएगा। तो लिहाजा जब ये मुस्तकिल नहीं है तो ये न महकूमुन अलैह बन सकता है और न महकूमुन बिही बन सकता है। बात समझ में आ गई? अब आइए आज के सबक पर भाई। कहते हैं वल हासिलु अन्न लफ्जल इब्तिदाई मौजूउन लिमानन कुल्लियिन वलफ्जता मिन मौजूअतुन लिकुल्लि वाहिदिन मिन जुज़ियातिहिल मख्सूसतिल मुतअक्कलति मिन हैसु इन्नहा हालातुन लिमुतअल्लकातिहा व आलातुन लितअर्रुफि अहवालिहा। वल हासिल, यहां से शरा का तीसरा हिस्सा है भाई। अब इसमें मुल्ला जामी रहमहुल्ला अपनी तकरीर फरमाएंगे और मजीद वजाहत कर देंगे माने इस्मी और माने हर्फी के दरमियान फर्क की, और बात खूब वाजे हो जाएगी। तो मुल्ला जामी रहमहुल्ला इस ये जो तीसरा हिस्सा है इसके अंदर लफ्ज मिन और इसका जो माना है, इसी तरह लफ्ज इब्तिदा और उसका जो माना है, इसमें फर्क बयान करेंगे वजह के एतबार से कि ये जो मीन का माना है और इब्तिदा का माना है, वजह के एतबार से ही इसमें फर्क है। लफ्ज इब्तिदा को एक माने कुल्ली के लिए वजह किया गया है और लफ्ज मीन को माने जुजी के लिए वजह किया गया है। तवज्जो है, एक लफ्ज मीन है और एक है उसका माना। लफ्ज मीन जो है इसको वजह किया गया है कौन से माना के लिए, माने जुजी के लिए, और एक है लफ्ज इब्तिदा और इसका माना है, लफ्ज इब्तिदा को माने कुल्ली के लिए वजह किया गया है। भाई कुल्ली और जुजी तो आप जानते हैं, कुल्ली वो है जो कसीरीन पर सादिका है, जैसे इंसान, तो इंसान जैद अमर बकर खालिद वगैरह सब पर सादिक आता है, सब इंसान हैं। और एक है जुजी, जुजी वो है वो जो उस कुल्ली के अफराद होते हैं वो जुजी कहलाते हैं, जैसे जैद ये जुजी है, ये इंसान का एक फर्द है, अमर ये इंसान का एक फर्द है, ये भी जुजी है, खालिद ये भी इंसान का एक फर्द है, एक जुजी है। भाई तो इब्तिदा को वजह किया गया है किसके लिए, माने कुल्ली के लिए, माने कुल्ली के लिए, और मीन को वजह किया गया है माने जुजी के लिए। भाई देखो इधर देखिए, इब्तिदा का माना क्या है, शुरू करना, ये एक कुल्ली माना है, ये कुल्ली माना है, ये फिर हर जगह पाया जाएगा, जहां भी किसी चीज का शुरू करना होगा वहां कौन सा माना है, शुरू करना, क्योंकि हर जुजी के जिमन में क्या मौजूद होती है, कुल्ली मौजूद होती है। जैसे जैद वो भी क्या है, इंसान, अमर वो भी क्या है, इंसान, बकर वो भी क्या है, इंसान, तो ये जुजियात हैं लेकिन इनके जिमन में कुल्ली भी मौजूद है। इसी तरह लफ्ज इब्तिदा को वजह किया गया है एक माने कुल्ली के लिए और मीन को वजह किया गया है इसी की जुजियात के लिए। जुजियात क्या होती हैं, खास होती हैं, क्या होती हैं, मालूम हुआ जब किसी खास फेल और खास जगह या जमाने के दरमियान आप शुरू करने वाला माना अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए मीन इस्तेमाल करेंगे। मसलन कोई भी फेल आप जिक्र करना चाहते हैं, मसलन जैसे मैंने जिक्र किया सेर तो मिनल बसरत इलल कूफा, कौन सा फेल मैं बतलाना चाहता था, सेर तू, हर फेल नहीं, दुनिया का हर फेल नहीं, सिर्फ कौन सा, सेर तू, और हर जगह नहीं, कौन सी जगह, बसरा, बसरा, तो ये खास मखसूस फेल हुआ और मखसूस जगह हुई, इनके दरमियान जो शुरू करना है वो कुल्ली है या जुजी है, वो जुजी है, दो खास चीजों के दरमियान, दो खास चीजों के दरमियान जो शुरू करना है वो जुजी है, वो उस कुल्ली के अफराद में से है, ये भी शुरू करना है लेकिन ये कुल्ली नहीं है बल्कि क्या है, जुजी है। कुल्ली तो वो है जो हर एक पर सादिक आए भाई, तो ये भी शुरू करना है या नहीं, ये कुल्ली इस पर भी सादिक आ रहा है। दूसरी मिसाल ले लो, बच्चा खेलता रहा सुबह से शाम तक, तो देखो बच्चे के खेलने की इब्तिदा कब से हो रही है, सुबह से, तो हर फेल मुराद है यहां या खास फेल की इब्तिदा, खास फेल, कौन सा फेल, खेलना, और हर जमाना मुराद है या खास जमाना, खास जमाना, कौन सा जमाना, सुबह वाला, तो इन दो, ये खेलना और सुबह, इन दोनों के दरमियान शुरू की निस्बत है, तो ये हर शुरू करना है या खास शुरू करना, खास मालूम हुआ ये जुजी है, ये वाला शुरू करना क्या है, जुजी है। इसी तरह तीसरी मिसाल ले लो, मैंने किताब का मुताला किया फुला सफे से फुला तक, हर फेल मुराद है या खास फेल, खास फेल यानी मुताला करना, और हर चीज से शुरू करना मुराद है या फुला खास सफे से शुरू करना मुराद है, हा, तो इन दोनों के दरमियान ये मुताला करना और सफा फुला, इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है शुरू करने वाली, ये हर शुरू करना है या खास शुरू करना है, खास शुरू करना है, मालूम हुआ ये क्या है, जुजी है भाई। और कुल्ली हर जुजी के जिमन में कुल्ली भी पाई जाती है, इन सब में भी शुरू करना है, इन सब में भी शुरू करना है, तो माने कुल्ली के लिए जब शुरू करने वाला माने कुल्ली है उसके लिए किसको वजह किया गया है, इब्तिदा को, और ये जो शुरू करने वाला माने जुजी है इसके लिए किसको वजह किया गया है, मीन को वजह किया गया है। लिहाजा जब आप दो मखसूस चीजों के दरमियान शुरू करना बतलाना चाहें तो आप मीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके लिए किसको वजह किया गया है, जब फेल भी खास हो और जगह या जमाना भी खास हो तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, मीन, क्योंकि इसके लिए मीन को वजह किया गया है, ये जुजी है भाई। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। अब देखिए किताब पर कहते हैं वल हासिलु, और हासिल ये है यानी ये जो कलाम ऊपर सारा जिक्र हुआ है, ये जो बहस जिक्र हुई इसका हासिल यह है कि अन्ना लफ्ज अल इब्तिदा मौजून लिमानन कुल्लीन, कि लफ्ज इब्तिदा इसको वजा किया गया है एक कुल्ली माना के लिए, व लफ्ज तमिन मौजूअतुन लिकुल्ली वाहिद मिन जुज़ियातिहिल मखसूसती, और लफ्ज मिन जो है इसको वजा किया गया है हर एक के लिए इसकी जो खास जुज़ियात हैं, इस शुरू करने की इस इब्तिदा की जो खास जुजियात हैं उनमें से हर एक के लिए इसको वजा किया गया है। जब भी कोई जुजी शुरू करना आप बतलाना चाहें यानी खास फेल और खास जगह या जमाना, तो उसके लिए किसको वजा किया गया है, मीन को, तो मीन को वजा किया गया है इसके जो मखसूस जुजियात हैं इस शुरू करने की उनमें से हर एक के लिए। अलमुताअक्कलती, आपकी किताबों में होगा अलमुताअल्लकती, ये किताबत की गलती है भाई, अलमुताअक्कलती इसकी इस्लाह कर लें भाई। वो मखसूस जुजियात, इधर देखिए मीन का माना शुरू करना, इब्तिदा का माना शुरू करना, मैंने लफ्ज इब्तिदा को हा आपको क्या माना समझ में आया, शुरू करना, और मीन से शुरू करना समझ में आएगा नहीं, बल्कि कब समझ में आएगा जब मुताल्लिका जिक्र करेंगे, जब मुताल्लिका जिक्र करेंगे तो ये उन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, निस्बत बन जाएगा, मालूम हुआ ये उन दोनों की हालत बयान कर रहा है। सिरतु मिनल बसरा इलल कूफा, ये मीन किसकी हालत बयान कर रहा है, सिरतु की भी और बसरा की भी, ये बतला रहा है कि आगाज हुआ है किसका हुआ है, किसका हुआ है, सिरतु का हुआ है, और कहां से हुआ है, बसरा से, तो सिरतु हुआ मनसूब यानी जिसकी निस्बत की जा रही है, और बसरा क्या हुआ, मनसूबुन इलै यानी जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है, ये चलने की निस्बत बसरा की तरफ भी है और कूफा की तरफ भी है। बसरा की तरफ कौन सी निस्बत है, शुरू करने वाली, और उस पर मीन दलालत कर रहा है, और इसी सिरतु की निस्बत किसकी तरफ है, कूफा की तरफ भी है, लेकिन यह कौन सी निस्बत है, इख्तिताम और इंतहा वाली, और इस पर इला दलालत कर रहा है। तो गोया सिरतु हुआ मनसूब जिसकी निस्बत की गई है, और बसरा और कूफा क्या है, मनसूबुन इले हैं जिसकी तरफ निस्बत की गई है। तो जब मीन से शुरू करने का माना समझ में आया, मीन से, तो मीन किसके लिए वजा है, माना जुजी के लिए, और यह माना जुजी आपको कब समझ में आएगा, जब इसके मुताल्लिकात समझ में आएंगे, क्योंकि ये शुरू करना ये कोई मुस्तकिल नहीं है बल्कि ये उन दोनों की हालत है। इस मीन को आपने वसीला और आला बनाया है किसके लिए, इन मुताल्लिकात की हालत को जानने के लिए। इस मीन ने बताया कि सिरतु वो मनसूब है, उसकी निस्बत की जा रही है, और बसरा जो है वो क्या है, मनसूब इलैह है, इसकी तरफ निस्बत की जा रही है। ये किसने बताया, मीन ने बताया। तो मीन के जरिए आपने इसके मुताल्लिकात की हालत या सिफत को जान लिया कि एक इनमें से मनसूब है और दूसरा मनसूबुन इलैह है। तो मीन वजह है किसके लिए, माना जुजी के लिए, और माना जुजी के लिए मखसूस फेल भी चाहिए, मखसूस जगह या जमाना भी चाहिए। तो मीन का माना उसका हम ताकुल कर ही नहीं सकते, हमारी अकल में वो आ ही नहीं सकता जब तक इसके मुताल्लिकात जिक्र न कर दिए जाएं, क्योंकि इसको वजह ही इसलिए किया गया है ताकि ये दो चीजों के दरमियान क्या बयान कर दे, निस्बत बयान कर दे, उसके जरिए उन दो चीजों की सिफत और हालत को हम पहचान लें। तो लिहाजा इसमें मुताल्लिकात का जिक्र जरूरी है, उसके बगैर ये समझ में, इसका माना हमें समझ में नहीं आएगा। तो कहते हैं वल्लफ़ज़त मिन मौज़ूअतुन लिकुल्लि वाहिदिन मिन जुज़ियातिहिल मख़सूसतिल मुताअक्कलति, और मीन जो है इसको वजा किया गया है हर एक के लिए जो इसकी खास जुजियात हैं, वो जुजियात जिनका ताकुल होता है, जो हमारी अकल में आती हैं, इस हैसियत से कि इन्ना हालातुन लिमुताल्लिकातिहा, कि ये जो है ये मुताल्लिकात के हालात हैं, व आलात उन लितारुफी अहवालिहा, और ये आलात हैं उन मुताल्लिकात के अहवाल को जानने के लिए। मीन को किसके लिए वजा किया गया, जुजी माना के लिए, और जुजी माना क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, मखसूस फेल भी चाहिए और मखसूस जगह या जमाना भी चाहिए, क्योंकि ये मीन ये उन दोनों की क्या बयान करता है, हालत बयान करता है और मीन को हम आला बनाते हैं इन दोनों की हालत को पहचानने के लिए। इसके मीन के जरिए हमें पता चलता है कि किसकी निस्बत की जा रही है, ये जो माकबल में फेल जिक्र हुआ उसकी की जा रही है, और किस खास चीज की तरफ की जा रही है, ये जो माबाद में चीज जिक्र हुई। तो ये मखसूस चीजों के दरमियान जो निस्बत होती है उसको बयान करने के लिए आता है, क्योंकि ये उनकी हालत बयान करता है, ये अलग कोई चीज नहीं है, ये अलग चीज नहीं है। जैसे मैंने कामा और जैदुन की मिसाल दी थी, कामा और जैदुन के दरमियान भी आपको निस्बत समझ में आ रही है, लेकिन वो निस्बत कोई अलग नहीं है, उसको आपने आला बनाया है। किसको जानने के लिए? कामा और जैद को जानने के लिए कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो किसको आईना बनाया? निस्बत को आला और बनाया। किसको जानने के लिए? इन दोनों की हालत को जानने के लिए कि कामा की क्या हालत है, ये महकूमन भी ही है, और जैदुन की क्या हालत है, वो महकूमन अले। तो ये निस्बत को जैसे आला बनाया है यहां पर, इसी तरह ये जो मीन है ये भी क्या काम करता है, दो चीजों के दरमियान निस्बत बयान करता है। तो ये आला है उन दोनों के, दोनों जो मुतालकात हैं उनके अहवाल को जानने के लिए ये आला है। तो जब तक वो मुतालकात जिक्र नहीं होंगे इसका माना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका माना मुस्तकिल है ही नहीं, ये तो उन दोनों की हालत बयान कर रहा है। भाई वो दो चीजें जिक्र होंगी तो उनकी हालत भी समझ में आएगी, वो दो चीजें ही नहीं है तो उनकी हालत कहां से समझ में आएगी? तो सिरतु भी जिक्र होना चाहिए और बसरा भी, या कोई और फेल और कोई और जगह जरूर जिक्र होनी चाहिए, फिर ही ये उनकी सिफत बनेगी, उनकी हालत बनेगी। फिर एक दफा तर्जमा देख लें, कहते हैं वल्लफ़ज़त मिन मौज़ूअतुन लिकुल वाहिदिन मिन जुज़ियातिहिल मख़सूसतिल मुतअक़्क़लति, और लफ्ज़ मिन इसको वज़ा किया गया है इसकी मखसूस जुज़ियात में से हर एक के लिए, वो मखसूस जुज़ियात अल मुतअक़्क़लति जिनका ताअक़ुल किया जाता है, जो अकल में आती हैं, जो हम समझते हैं, वो जुज़ियात जो हमारी अकल में आती हैं। मिन हैसु इन नहा पढ़े, मिन हैसु इन नहा हालात उन, हैसु के बाद इन्ना पढ़े भाई, हैसु के बाद क्या पढ़ते हैं? इन्ना, क्योंकि हैसु मुजाफ होता है जुमले की तरफ, और अगर अन्ना पढ़ेंगे फिर तो ये मुफरद बन जाएगा, अन्ना तो क्या करता है जुमले को मस्तर की तावील में कर देता है। तो हैसु के बाद इन्ना पढ़ेंगे। हां बाज ओलामा बाज अइमा फरमाते हैं कि हैसु मुफरद की तरफ भी मुजाफ हो जाता है, तो उनके मजहब पर अन्ना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जमहूर के नजदीक इन्ना पढ़ेंगे। तो मीन जो है इसको वजा किया गया है अपनी उन मखसूस जुजियात के लिए जिनका ताअक्कुल किया जाता है, मिन हैसु इस हैसियत से इन्नहा हालातुन लिमुतअल्लकातिहा, कि ये उसके मुतअल्लकात के हालात हैं। ये जुजी शुरू करना ये कोई अलग चीज नहीं, बल्कि ये अपने मुतअल्लकात के हालात होते हैं, उनकी सिफात होती हैं। तो वो मुतअल्लकात होंगे तो उनकी सिफत भी हो समझ में आएगी, वो मुतअल्लकात नहीं तो उनकी सिफत भी समझ में नहीं आएगी। इस हैसियत से कि इन्नहा हालात उन लिमुतअल्लकातिहा, के जुजियात जो हैं ये हालात होते हैं, यानी ये जुजी शुरू करना जो है ये हालात होते हैं अपने मुतअल्लकात के लिए। वह आलातुन लितारुफी अहवालिहा, और ये जो जुजियात हैं शुरू करने की ये आलात हैं लितारुफी अहवालिहा, अपने मुतअल्लकात के अहवाल को पहचानने के लिए। इससे मुतअल्लकात के अहवाल का पता चलेगा कि एक चीज मंसूब है और दूसरी मंसूबुन इले, एक चीज है जिसको शुरू किया जा रहा है और एक जगह या जमाना है जहां से शुरू किया जा रहा है। वदालिकल मानल कुल्लियु दी, अब आपको बात समझ में आ गई कि इब्तिदा दो किस्म पर है, एक इब्तिदा कुल्ली और एक इब्तिदा जुजी। इब्तिदा जुजी हमेशा किसके दरमियान होगी? एक किसी मखसूस फेल और मखसूस जगह या जमाने के दरमियान होगी। अब बताने लगे कहते हैं वल मानल कुल्ली, और माने कुल्ली जो है ये शुरू करना, युम किनु अयुताकल कसदन, मुमकिन है उसका ताअक्कुल करना कसदन, कसदन उसको समझना, जहन का उसकी तरफ मुतवज्जे होना और उसको समझना मुमकिन है। कहते हैं वलमा वजालिकल मानल कुल्ली युमकिनु अयुताकल कसदन, और वो माने कुल्ली जो है उसका ताअक्कुल करना कसदन इरादे के साथ ये मुमकिन है। वयुलाहज़ा फी हद्दी ज़ातिही, और उसको मुलाहजा करना अपनी जात के एतबार से ये भी मुमकिन है। फिर इबारत सुनो, وذلك المعنى الكلي يمكن ان يتعقل قصدا ويلاحظ في حد ذاته. اور وہ والا جو معنی کلی ہے یعنی شروع کرنا جو کلی معنی ہے ممکن ہے کہ اس کا قصدن تعقل کیا جائے. وَيُلَاحَظَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ اور اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے ملاحظہ کیا جائے یہ ممکن ہے. فَيَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّتِ جب اس کا تعقل قصدن کرنا ممکن ہے اور اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو ملاحظہ کرنا یعنی عقل کا اس کی طرف متوجہ ہونا ممکن ہے. تو فیستقل بالمفہومیتی تو پھر یہ والا شروع کرنا جو معنی کلی ہے یہ مستقل ہوگا مفہوم ہونے کے اعتبار سے یعنی مستقلن سمجھ میں آئے گا کسی اسم سے. ویصلح ان یکون محکوماً علیہ و بہ اور یہ صلاحیت رکھے گا کہ وہ محکوماً علیہ اور بہ ہو سکے کیونکہ اس کی طرف عقل کا توجہ کرنا ممکن ہے. جب عقل قصدن اس کی طرف توجہ کرے گی تو پھر یہ مستقل بالمفہومیت ہوا یعنی یہ مستقلن مفہوم ہو رہا ہے. اور جب جو چیز بھی مستقلن مفہوم ہو رہی ہو وہ محکوم علیہ بھی بن سکتی ہے اور محکوم بہ بھی. یہ معنی ہے فیستقل بالمفہومیتی تو یہ مستقل بالمفہومیت ہوگا. ویصلح ان یکون محکوما علیہ و بہ اور یہ صلاحیت رکھے گا کہ یہ محکوم علیہ اور بہ ہو سکے. واما تلک الجزئیات اور باقی وہ جزئیات جو ہیں یعنی شروع کرنے کی جو جزئیات ہیں جو کس میں ہوتی ہیں خاص فعل اور خاص جگہ یا زمانے کے بیچ میں وہ جزیات وہ شروع کرنا مستقل نہیں ہے. وہ جب تک وہ متعلقات ذکر نہ کریں وہ شروع کرنا سمجھ میں نہیں آتا. جب وہ مستقل نہیں ہے اور عقل اس کو مستقلن ملاحظہ نہیں کر سکتی عقل مستقلن اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتی تو وہ محکوم علیہ بھی نہیں بن سکتا اور محکوم بہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ محکوم علیہ بھی وہی بنتا ہے جس کی طرف عقل مستقلن توجہ کر سکے اور محکوم بہ بھی وہی بنتا ہے جس کی طرف عقل مستقلن توجہ کر سکے. تو کہتے ہیں وہ اما تلک الجزئیات فلا تستقل بالمفہومیت اور باقی وہ جزئیات جو ہیں تو وہ مستقل بالمفہومیت نہیں ہیں. ولا تصلح ان تکون محکوما علیہا و بہا تو وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ محکوم علیہ اور محکوم بہا بن جائیں. اذ لا بد فی کل واحد منہما ان یکون ملحوظا قصدا اس لیے کیوں ادھر دیکھیے وہ محکوم علیہ اور محکوم بہ نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی ابھی میں نے وجہ بتلا دی کیونکہ محکوم علیہ یا محکوم بہ وہی بنے گا جس کی طرف عقل قصدن اور بذات توجہ کرے ورنہ وہ محکوم علیہ یا محکوم بہ نہیں بن سکتا یہی بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو جزی معنی ہے ولا تصلح ان تکون محکوما علیہا و بہا تو یہ جزیات صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہ محکوم علیہا یا محکوم بہا بن سکیں. بات سمجھ میں آگے بھائی پیچھے آیا تھا محکوم علیہ اور محکوم بہ یہاں یا محکوما علیہا و بہا یہاں واحد مؤنث کی ضمیر راجے کی دراصل وہ جزیات کی بات چل رہی ہے اور جزیات کیا ہے جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں واحد مؤنث تو اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف راجے کی کہ وہ جزیات جو ہیں فلا تستقل بالمفہومیت وہ مستقل بالمفہومیت بھی نہیں ہے. ولا تصلح ان تکون محکوما علیہا و بہا اور وہ جزیات صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ محکوم علیہا بن سکیں یا محکوم بہا بن سکیں. اذ لا بد فی کل واحد منہما اس لیے کیونکہ ان دونوں میں ضروری ہے کن دونوں میں محکوم علیہ اور محکوم بہ کے اندر ضروری ہے کہ یکون ملحوظا قصدا کہ قصدا یہ ملحوظ ہونا چاہیے. یہ والا معنی کیا ہونا چاہیے جو محکوم علیہ ہے قصدا ملحوظ ہونا چاہیے. بھائی کیوں قصدا کیوں ملحوظ ہونا چاہیے میں نے وجہ ذکر کر دی کیونکہ آپ نے اس پر ایک حکم لگانا ہے تو ذہن کی اس کی طرف توجہ ہوگی تو حکم لگائیں گے. زید قائم میں زید پر حکم لگانا چاہتا ہوں قائمون کا تو پہلے اس چیز کا بھی تصور کرنا پڑے گا جس پر حکم لگانا چاہتے ہیں اور کیا حکم لگانا چاہتے ہیں قائمون والا تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی پڑے گی اور پھر ہی قائمون کی نسبت کس کی طرف کریں گے زید کی طرف. تو دونوں مستقل بالمفہوم ہوں یعنی قصدن دونوں کی طرف عقل کی توجہ ہو پھر ہی محکوم علیہ اور محکوم بہ بن سکتے ہیں ویسے نہیں. اور یہ جزیات تو مستقل بالمفہوم نہیں تو یہ محکوم علیہ اور محکوم بہ نہیں بن سکتی. اذ لا بد فی کل واحد منہما ان یکون ملحوظا قصدا اس لیے کیونکہ ضروری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر یعنی یہ محکوم علیہ اور محکوم بہ ان میں سے ہر ایک میں ضروری ہے کہ ان یکون ملحوظا قصدا کہ وہ قصدا ملحوظ ہو یعنی قصدا عقل کی اس کی طرف توجہ ہو. لیمکن ان یعتبر نسبت बैनहु व बैन गैरिही, ताकि ये मुमकिन हो सके कि इसके और इसके गैर के दरमियान निस्बत का एतबार किया जाए। आप जैद और कायम के दरमियान निस्बत का एतबार करना चाहते हैं तो तभी एतबार करेंगे ना जब पहले जैद की भी तरफ भी मुस्तकिलन तवज्जो हो और कायम की तरफ भी मुस्तकिलन तवज्जो हो। इन दोनों की तरफ तवज्जो होगी तो फिर ही इन दोनों के दरमियान निस्बत को भी कभी एतबार किया जा सकेगा। ये माना है लियुम की नयुतबारा निस्बत बैनहू व बैन गैरिही, ताकि मुमकिन हो कि एतबार किया जा सके निस्बत का इस चीज के दरमियान और इसके गैर के दरमियान, फिर ही एतबार हो सकेगा जब ये मलफूज कसदन हो। भाई बल तिलकल जुजियात ला तुतअक्कलु इल्ला बिज़िक्र मुतअल्लिकातिहा, और ये जो जुजियात हैं, कौन सी जुजियात, ये जो शुरू करने की जुजियात हैं जिसके लिए मिन वजा है, जिसके लिए मखसूस फेल भी चाहिए और मखसूस जगह भी, तो इन जुजियात का ताकुल आप कर ही नहीं सकते जब तक मुतअल्लिकात जो हैं उनको जिक्र ना किया जाए। मीन शुरू करने पर दलालत करता है, लेकिन ये शुरू करना कौन सा है, कुल्ली है जुजी है, जुजी है, और जुजी शुरू करना कौन सा होता है जो दो मखसूस चीजों के दरमियान हो। जब दो मखसूस चीजों के दरमियान शुरू करना वो जुजी है तो वह दोनों मखसूस चीजों का भी जिक्र करना पड़ेगा या नहीं, उसके बगैर खुद ब खुद तो वह समझ में नहीं आएंगी। भाई कहते हैं बल तिलकल जुज़ियात ला तुतअक्कलु इल्ला बिज़िक्र मुतअल्लिकातिहा, बल्कि वो जुज़ियात जो हैं उनका ताकुल नहीं किया जा सकता, उनका वो जो शुरू करने वाला जुज़ी माने हैं उनका ताकुल नहीं किया जा सकता, वो अकल में आ ही नहीं सकते, वो समझे ही नहीं जा सकते। इल्ला बिज़िक्र मुतअल्लिकातिहा, मगर यह कि उसके मुतअल्लिकात को जिक्र कर दिया जाए, लितकून आलातिन लिमुलाहजती अहवालिहा, ताकि ये जुजी मानी जो हैं ये आलात बन जाएं इन मुतालकात के अहवाल को मुलाहजा करने के लिए। ये जुजी शुरू करना ये मुस्तकिल था या ये हालात थे अपने मुतालकात के, ये हालात थे, उनके दरमियान निस्बत थी, तो निस्बत तो तभी समझ में आएगी ना जब मंसूब और मंसूब इले आपको समझ में आए। दो चीजें समझ, कामा और जैदुन के दरमियान निस्बत है, कामा और जैदुन आपको समझ में आएंगे तो इनके दरमियान निस्बत भी समझ में आएगी, जब तक कामा और जैदुन नहीं समझ में आएंगे तो इनके दरमियान निस्बत भी समझ में नहीं आएगी। तो इसी तरह जुजी शुरू करना जो है वह दो मखसूस चीजों के दरमियान है, तो जरूरी है कि उन दोनों को जिक्र किया जाए, उन दोनों के जिक्र किए बगैर इनके दरमियान शुरू करने की निस्बत भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जुजी शुरू करना है ये इन दोनों चीजों के हालात हैं, और इन दोनों के हालात ये तभी बन हो सकते हैं जब ये दोनों जिक्र होंगी, बगैर जिक्र के तो हालात नहीं हो सकते इनकी, इनकी सिफत ये शुरू करना नहीं बन सकता। भाई देखिए फिर तर्जमा कहते हैं बल तिलकल जुजियात ला तुतअक्कलु इल्ला बिज़िक्र मुतअल्लिकातिहा, और वो जुजियात जो हैं उनका ताकुल नहीं किया जा सकता मगर यह कि उसके मुतअल्लिकात को जिक्र कर दिया जाए, लितकूना आलातिन लिमुलाहजति अहवालिहा, ताकि ये जो जुजियात जो हैं ये आलात बन जाए उन मुतअल्लिकात के अहवाल को मुलाहजा करने के लिए, इससे उनके अहवाल समझ में आ जाए। वहादा हुअल मुरादु बिकौलिहिम, और यही मुराद है बिकौलिहिम आई बिकौलिन नुहाती हम, जमीर किसको राजे कर दी, नहवियों को। आप कहेंगे पीछे तो नहवियों का जिक्र नहीं आया, भाई ये जो फन आप पढ़ रहे हो तो उस फन वालों का जिक्र मानन आ चुका है, जब नहव की किताब पढ़ रहे हैं तो मानन किसका जिक्र आ चुका, गोया मानवी तौर पर नहवियों का जिक्र आ चुका, क्योंकि ये उन्हीं की बातें हैं सारी। भाई तो कहते हैं वहादा हुअल मुरादु बिकौलिहिम, और यही मुराद है नहवियों के इस कौल से। नहवी क्या फरमाते हैं, इन नल हर्फ कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा बिकौलिहिम, इन्ना इन्ना पढ़ना भाई, क्योंकि कौल के बाद और काला वगैरह के बाद क्या पढ़ते हैं, इन्ना, और यही मुराद है नहवियों के इस कौल से भी कि इन नल हर्फ कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा, कि हर्फ जो है वो ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर, फी गैरिहा जो उस कलिमा के गैर में होता है, जो उस कलिमा के गैर में होता है, यानी उसके गैर के एतबार से होता है, यानी मुतअल्लिकात के एतबार से होता है वो, क्योंकि ये वाला जो जुजी माना है इसका अपना अलग वजूद नहीं, ये दो चीजों के दरमियान निस्बत है, तो वो दो चीजें जिक्र होंगी तो इससे शुरू करने वाला माना भी समझ में आएगा मीन से, वरना शुरू करने वाला माना तो मालूम हुआ हर्फ ऐसे माना पर दलालत करता है जो किसके एतबार से साबित है, अपने गैर के यानी अपने मुतालकात के एतबार से साबित है, उसके मुतालकात के बगैर समझ में ही नहीं आ सकता। ये माना है कि इन्नल हर्फ कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा, के हर्फ वो ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो इसके गैर के एतबार से साबित होता है, यानी इसके मुतालकात के एतबार से साबित होता है। ये था शरा का तीसरा हिस्सा जिसमें मुल्ला जामी रहमहुल्ला ने लफ्ज इब्तिदा और लफ्ज मीन के माना में फर्क बयान किया बेतबार वजा के, कि लफ्ज इब्तिदा माने कुल्ली के लिए वजा है और लफ्ज मीन जो है माने जुजी के लिए वजा है। भाई वह ईदा आरफ तहाजा, यह चौथा हिस्सा आ गया भाई हासिल महसूल की बहस का। इसके अंदर एक एतराज का जवाब देंगे। एतराज ये कि ए साहिब जामी, आपने इसम की तारीफ में अलकलिमतु मा दल्ला अला मानन फी नफसी ही, इस फी नफसी ही की हाज अमीर को किसकी तरफ लौटाया, मा दल्ला की तरफ। और मा दल्ला से क्या मुराद है, कलिमा, कलिमा मा से क्या मुराद, कलिमा। तो मुख्तसर लफ्जों में यूं कहो कि आपने नफसी ही की हाज अमीर कलिमा की तरफ राजी की। और आगे आपने बतलाया कि ईजाह के अंदर हल्लामा इब्ने हाजिब ने इस फी नफसी ही की हाज अमीर किसको राजे की है, माना को राजे की है। तो आपने अल्लामा इब्ने हाजिब की मुखालिफत कर दी, उन्होंने तो फी नफसी ही की हाज अमीर माना को राजे की थी इजाह के अंदर, और आपने किसको राजे कर दी, कलिमा को राजे कर दिया। तो आपको मुल्ला जामी रहमल्ला इसमें बतलाएंगे कि फी नफसी ही की हाज अमीर चाहे माना को राजे करो चाहे कलिमा को राजे करो, दोनों का माल और नतीजा एक ही है। फी नफसी ही की हाज अमीर माना को राजे करो तो क्या तर्जमा बनेगा, मानन फी नफसी ही ऐ मानन बी एतबारी फी नफसी ही, ऐसा माना जो अपनी जात के एतबार से साबित है, यानी मुस्तकिल बिल मफहूमियत है, मुस्तकिलन समझ में आ रहा है, किसी के ताबेअ नहीं है। तो माना फी नफसी ही से क्या मुराद हुआ, माना का मुस्तकिल बिल मफहूम होना। इसी तरह कहते हैं अगर फी नफसी ही की हाज अमीर कलिमा को राजे करें तो भी यही माना है, मानन फी नफसिल कलिमती, ऐसा माना जो कलिमा की जात में हो। कलिमा की जात में माना होने का क्या मतलब, कि कलिमा खुद उस पर दलालत कर रहा है, किसी और लफ्ज को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं, यानी ये मुस्तकिल बिल मफहूम है, मुस्तकिलन उस कलिमे से समझ में आ रहा है। तो फी नफसी ही की हाज अमीर चाहे माना को राजे करें उसका माना भी मुस्तकिल बिल मफहूम होना, फी नफसी ही की हाज अमीर कलिमा को राजे करें उसका माना भी क्या है, मुस्तकिल बिल मफहूम होना। तो दोनों का माल एक ही है, चाहे ये जमीर माना को राजे करो चाहे ये जमीर कलिमा को राजे करो, दोनों का माना एक ही है, इससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती। अल्लामा इब्ने हाजिब ने किसको राजे की थी, माना को, और शारह जामी ने किसको राजे कर दी, कलिमा को, लेकिन इससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती। बात समझ में आ गई, देखिए भाई कहते हैं वह ईदा आरफ्ता हादा आलिमता, और जब आपने इस बात को जान लिया, ये सारी तफसील जब आपने जान ली, वह ईदा आरफ्ता हाजा, और जब ये सारी तफसील आपने जान ली तो आलिमता, तो आपको ये बात मालूम हो गई कि अन्नल मुराद अभी कैनूनतिल माना फी नफसी ही, कैनूना ये मस्दर है, कान यकूनु कौनन व कैनूनतन, तो ये कौन के माना में है, होना होना। तो कहते हैं वह इदा आरफ तहाजा, और जब आपने ये सारी बहस जान ली, आलिमता तो आपने जान लिया कि अन्नल मुरादा बिकैनूनतिल माना फी नफसी ही, के माना का फी नफसी ही होने से मुराद जो है इस्तिक्लालुहू बिल मफहूमियती, वो उस माना का मुस्तकिल बिल मफहूम होना है। वह बिकैनूनतिल माना फी नफसिल कलिमती, और माना का नफ्स कलिमा में होने के से मुराद जो है वो उससे क्या मुराद है, कहते हैं दलालतुहा अलैही, कि वो कलिमा उस पर दलालत कर रहा है उस माना पर, मिन गैर हाजतिन इला जम्मी कलिमतिन उखरा इलैहा, बगैर इस हाजत के कि उसके साथ कोई दूसरा कलिमा मिलाया जाए। माना का नफ्स माना में होना क्या माना था, यानी वो मुस्तकिल बिल मफहूम है, और माना का नफ्स कलिमा में होना इसका क्या माना है, कि कलिमा खुद उस पर दलालत कर रहा है, उसके साथ कोई और कलिमा जोड़ने की हाजत नहीं। यह माना है वह भी कहनू नतील माना फी नफसिल कलिमती, और माना का नफसे कलिमा होने से मुराद यह है कि दलालतुहा अलैहि मिन गैर हाजतिन इला जम्मी कलिमतिन उखरा इलैहा, कि कलिमा उस पर दलालत कर रहा है बगैर इस हाजत के उसके उसके साथ कोई दूसरा कलिमा मिलाया जाए। लिस्तिकलालिही बिल मफहूमियति, इसलिए क्योंकि वो माना जो है वो मुस्तकिल बिल मफहूम होता है, यानी मुस्तकिलन उस लफ्ज से समझ में आता है। फमरजउ कैनूनतिल माना फी नफसिही व कैनूनतिही फी नफसिल कलिमति दाल्लति अलैहि इला अम्रिन वाहिदिन, तो कहते हैं कि माना का नफ्स माना में होना और माना का नफ्स कलिमा में होना दोनों का माल एक ही है, दोनों का माल एक ही है, नतीजा एक ही है, दोनों का एक ही माना है। क्या माना? कि माना मुस्तकिल बिल मफहूम है। माना क्या है? मुस्तकिल बिल मफहूम है, मुस्तकिलन समझ में आ रहा है। फमरजिउ, मर्ज मस्दर है भाई, मस्दर मस्दर मीमी। फमरजिउ कैनूनतिल माना फी नफसिही, तो माना का फी नफसी ही होना व कैनूनती ही फी नफसिल कलिमती, और माना का नफ्से कलिमा में होना वो कलिमा अद्दालती अलैहि जो उस पर दलालत कर रहा है, तो माना का नफ्से कलिमा में होना और माना का उस कलिमे की जात में होना जो उस पर दलालत कर रहा है। तर्जमे पे नजर है, फमर जो कैनूनतिल माना फी नफसी ही, तो माना का अपनी जात में होना इसका मर्जा, वह कैनूनति ही फी नफसिल कलिमति दालति अलैही, और माना का उस कलिमे की जात में होना जो उस पर दलालत कर रहा है, इन दोनों का मर्जा जो है इला अमरिन वाहिदिन, एक ही अमर की तरफ है, यानी एक ही चीज की तरफ दोनों लौटते हैं, दोनों का नतीजा एक ही है। वह वस्तिकलालहू बिल मफहूमियती, और वह उस माना का मुस्तकिल बिल मफहूम होना है। दोनों का माल क्या है? दोनों का मर्जे क्या है? कि ये माना मुस्तकिल बिल मफहूम है। तो आफी नफसी ही कि हा जमीर चाहे कलिमा को राजे करें चाहे आप माना को राजे करें, दोनों का माल और नतीजा एक ही है, दोनों से मुराद जो है कि वो माना मुस्तकिल बिल मफहूम है, मुस्तकिलन समझ में आ रहा है। चलिए बस करें भाई, बात अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।